करता है याद रब को मोमिन जो बाकरीना, होता है नूरे हक से अनवार उसका सीना।
गुमराह जो बशर थे गरकाब हो गए वो, तूफान में सलामत था नूह का सफीना।
गुमराह जो बशर थे गरकाब हो गए सब, तूफान में सलामत था नूह का सफीना। समाज फरमाइए हजरत के तूफान नूह कैसे आया और हजरत नूह का सफीना कैसे महफूज रहा और नूह की कौम क्यों गरकाब हुई।
सुनो ऐ दोस्तों, ये नूह पैगंबर का किस्सा है,
सुनो ऐ दोस्तों ये नूह पैगंबर का किस्सा है,
सुनो किस तरह उनके दौर में तूफान आया है। किस तरह उनके दौर में तूफान आया है,
किस तरह उनके दौर में तूफान आया है, किस तरह उनके दौर में तूफान आया है, किस तरह उनके दौर में तूफान आया है।
सामईन हजरात, यहाँ से तूफान नूह का ये वाकया शुरू होता है जब हजरत इदरीस पैगंबर दुनिया से जन्नत में चले गए तो फिर उनकी आल को शैतान ने किस तरह बहकाया और क्या कहा, समाप्त कीजिएगा।
गए दुनिया से जन्नत में जनाब इदरीस पैगंबर, तो उनकी आल को बहकाया फिर शैतान ने आकर, कहा तुम बाप की मूरत को पूजो फायदा होगा, वो तुमसे खुश रहेंगे तुमको हासिल मर्तबा होगा, वो सब भूले खुदा को बुत परस्ती पर हुए माइल, खुदा का नूर छोड़ा भाई उनको जुल्मते बातिल, हुई गुमराह दुनिया क्योंकि शैतान सबका रहबर था, न फिक्रे आकिबत थी और न कुछ अल्लाह का डर था, इसी सूरत से गुजरी 400 बरसे बुराई में, खुदा का नाम लेवा इक न था सारी खुदाई में, जहां में हद से ज्यादा बढ़ गए जब कुफुर के साए, पैगंबर नूह अल्लाह पाक ने मबूस फरमाए, पैगंबर नूह सबको दीन की बातें बताते थे, वो जा जा कर खुदा के खौफ से सबको डराते थे,
वो कहते थे खुदा माबूद है राजिक है वो सबका, करो उसकी इबादत नाम लो हर दम उसी रब का। पैगंबर हूँ खुदा का मुझ पे तुम ईमान ले आओ, बुराई छोड़ दो और नेक हक की राह अपनाओ, करो मत पैरवी शैतान की वो सबका दुश्मन है, खुदा से और खुदा के नेक बंदों से वो बदजन है।
बुराई का नतीजा तुम कभी अच्छा न पाओगे,
बुराई का नतीजा तुम कभी अच्छा न पाओगे,
बुराई का नतीजा तुम कभी अच्छा न पाओगे।
हमारी बात मानो वरना तुम दोज़ख में जाओगे,
हमारी बात
साल का अरसा गुजर गया इस गुमराही को, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह पैगंबर को भेजा और उन्होंने जब खुदा की बातें सबको बताई तो उनकी बात सुनकर सब लोग क्या कहने लगे समाप्त कीजिएगा। हिदायत सुन के वो जालिम हंसी उनकी उड़ाते थे, जनाबे नूह पैगंबर को दीवाना बताते थे, जनाबे नूह ने हर चंद उन सब को हिदायत की, मगर उन जालिमों ने खुल के शैतान की हिमायत की, सताया करते थे जालिम सभी तबलीग पर उनको, किया करते थे जख्मी पत्थरों से मार कर उनको, जनाबे नूह को बीवी भी दीवाना बताती थी, वो खुद गुमराह थी तौहीद पर ईमान लाती थी, भलाई की ना अपनी कौम से कुछ आस थी उनको, के गुजरी सैकड़ों बरसें परेशान थे वो ऐसा हो, बरस 950 अल्लाह से वो उम्र लाए थे, फकत 80 बशर ही आपके हलके में आए थे, परेशान हो के हजरत नूह ने की बद्दुआ उनको, कहा रो रो के या रब कौम को मेरी हलाकत हो, खुदाए पाक ने उनकी दुआ मकबूल फरमाई, उन्हें जिब्रील ने जन्नत से लाकर एक टहनी दी, जिमी में गाड़ दी वो शाख पैगंबर ने खुश होकर, दिया पानी उसे बढ़ती रही दिन रात वो ऊपर, दरख्त उसका हुआ ऊंचाई में फिर 600 गज लंबा, मोटाई यानी चौड़ाई में था वो 400 गज का,
बरस 40 गुजरे शाख ने जब परवरिश पाई,
बरस 40 गुजरे शाख ने जब
जहाँ
جہاں کے سب درختوں سے بھی زیادہ اس کی اونچائی
جہاں کے سب درختوں سے بھی زیادہ اس کی اونچائی جہاں کے سب درختوں سے بھی زیادہ اس کی اونچائی جہاں کے سب درختوں سے بھی زیادہ اس کی اونچائی
حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں تو لوگ ان کو پتھر مارا کرتے تھے اور تو اور ان کی بیوی بھی ان کو دیوانہ بتاتی تھی کیونکہ وہ خود بھی گمراہ تھی جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی کیونکہ آپ کی پوری عمر 950 سال کی ہوئی ہے اس 950 میں سے سینکڑوں سالیں یعنی 400-500 سالیں آپ کو گزر گئیں لیکن صرف 80 لوگ ہی آپ کے حلقے میں آئے تو آپ نے بد دعا فرمائی کہ پروردگار تو میری قوم کو ہلاک کر دے جبریل امین جنت سے ایک ٹہنی لا کر دیتے ہیں اور وہ ٹہنی زمین میں گاڑ دی جاتی ہے لیکن جب 40 سال گزر گئے تو اس ٹہنی نے اس شاخ نے پرورش پائی جو جہاں کے سب درختوں سے دنیا کے سب درختوں سے اونچی ہو گئی اور پھر کیا ہوا سماعت فرمائیے
رہی ہر ایک عورت بانج ان 40 برسوں تک عذاب ان پر ہوا اللہ کی جانب سے یہ بے شک بحکمے کی بریا پھر ایک دن روح العمی آئے جناب نوح کو نجاری کے سب کام سکھلائے سبھی اوزار بنوا کر کہا اس پیڑ کو کاٹو پھر اس کو چیر کر آرے سے تم تختے بنا ڈالو شجر کاٹا وہ حضرت نوح نے تختے بنا ڈالے بنی 124,000 اس پیڑ میں تختے ہر تختے پہ تھا نام نبی دونوں طرف لکھا نبی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک نام تھا سب کا کہا جبریل نے پھر نوح سے کشتی بناؤ تم کہ اب طوفان آنے والا ہے خود کو بچاؤ تم بنائی نوح نے کشتی پڑے جب 4 تختے کم کہا جبریل سے پورے کریں تختے کہاں سے ہم کہا روح الامین نے نیل دریا سے منگا لیجے ابو بکر و عمر عثمان علی کے نام کے تختے لگیں گے جب وہ تختے تو تمہیں کشتی بچائے گی نہیں تو قہر کے طوفان میں وہ ڈوب جائے گی کہا یہ نوح نے یہ نام کس کے ہیں بتا دیجئے تو بولے حضرت روح الامی یہ نام سن لیجئے
یہ ختم المرسل حضرت محمد کے خلیفہ ہیں
ختم المرسل حضرت محمد کے خلیفہ ہیں
یہ ختم المرسل حضرت محمد کے خلیفہ ہیں
یہ شہدا ہیں محمد مصطفیٰ کے اور صحابہ ہیں
یہ شہدا ہیں محمد مصطفیٰ کے اور صحابہ
محمد مصطفیٰ کے اور صحابہ
600 गज लंबा और 400 गज मोटा हो गया। उसके बाद एक दिन रूहुल अमी फिर आए और जनाबे नूह को नज्जारी यानी कारपेंट्री के सारे काम सिखलाए, सभी औजार बनवा कर कहा कि अब इस पेड़ को काटो और इसको चीर कर तुम तख्ते बना लो। जब हजरत नूह ने उस पेड़ को चीरा तो उसमें 124,000 तख्ते निकले। फिर उन तख्तों से एक कश्ती बनाई गई, लेकिन 4 तख्ते जब कम पड़े तो रूहुल अमी कहते हैं कि दरियाए नील से ये मंगवा लीजिए, अबू बकर, उस्मान, अली और उमर के नाम के ये 4 तख्ते जब लग जाएंगे तो ये कश्ती कहर से बच जाएगी। नूह कहते हैं कि ये कौन है, तो फरमाया कि ये खत्मुल मुरसली हजरत मोहम्मद के खलीफा हैं चारों, ये शैदा हैं मोहम्मद मुस्तफा के और सहाबा हैं। उसके बाद क्या होता है सुने,
मोहम्मद मुस्तफा होंगे नबी आखिर जमाने में, बड़ी पाकीज़ा होंगी हस्तियां उनके घराने में, वो अल्लाह पाक की तौहीद का डंका बजाएंगे, वो शम्मे दीन की सारी खुदाई में जलाएंगे, फिर उनके बाद आलम में नबी कोई न आएगा, मोहब्बत जो करेगा उनसे वो जन्नत में जाएगा, तारुफ ये कराया नूह को जिब्रील ने जिस दम, हुई तस्कीन हजरत नूह को जाता रहा सब गम, कहा लड़कों से हजरत नूह ने तुम नील पर जाओ, शजर है एक उस दरिया में उसको जाके ले आओ, कहा लड़कों ने ऐसा पहलवा तो पूज है बाबा, सिवा उसके कोई भी इस शजर को ला नहीं सकता, बुलाया ऊज को फिर नूह पैगंबर ने फरमाया कि अंदर नील के है एक शजर तू उसको जाके ला, मेरा वादा है तुझको पेट भर खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर ऊज फौरन चल दिया और नील पर पहुंचा, दिलेरी से वो फौरन घुस गया उस नील के अंदर, उखाड़ा पेड़ पूरा और दिया वो नूह को लाकर, उसे दी रोटियां जब 3 हजरत ने तो ये बोला, हजारों रोटियां खाकर भी मैं रह जाता हूँ भूखा,
कहा ये नूह ने बिस्मिल्ला पढ़कर खा तू ये रोटी,
कहा ये नूह ने बिस्मिल्ला पढ़कर खा तू ये रोटी,
कहा ये नूह ने बिस्मिल्ला पढ़कर खा तू ये रोटी।
जब उसने खाई तो आधी ही रोटी से हुई सैरी,
जब उसने खाई तो आधी ही रोटी से हुई सैरी, जब उसने खाई तो आधी ही रोटी से हुई सैरी, जब उसने खाई तो आधी ही रोटी से हुई
حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حکم دیتے ہیں کہ دریائے نیل سے وہ درخت لاؤ، لیکن بیٹے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس درخت کو نہیں لا سکتے، ہاں ایک شخص ہے اس کا نام اوج ہے وہ لا سکتا ہے۔ اوج کو بلایا گیا، और कहा कि अगर तुम वो पेड़ उखाड़ कर लाओगे तो हम तुमको भरपेट खाना खिलाएंगे। ऊज वो पेड़ उखाड़ कर लाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसको 3 रोटियां देते हैं खाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि 1000 रोटियां खाकर भी मैं भूखा रह जाता हूँ, इन 3 रोटियों में मेरा क्या होगा। तो हजरत नूह ने फरमाया कि तू बिस्मिल्लाह पढ़कर खा दो। जब उसने रोटियां खाई तो आधी रोटी में ही वो पेट भर जाता है उसका। हजरत ये ऊज कौन है, जरा इसका तारुफ सुनिएगा। ये ऊज बिन औलक का नाम आपने सुना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही ये पैदा हो गया था और हजरत मूसा के ज़माने तक रहा। इसने 3500 बरस की उम्र पाई और बहुत ही ताकत थी। जब नूह का ये तूफान आया, तूफान नूह, तो उस तूफान का पानी इसके कमर कमर था, इतना लंबा, सबसे ज्यादा लंबा आदमी था ये दुनिया का। सुनिएगा इस बंद में।
तारुफ ऊज का सुनिए के ये था ऊप का बेटा, जमाना जब था आदम का हुआ था वो तभी पैदा, खुराक उसकी बहुत थी वो 1000 रोटी खाता था, थी उसकी उम्र 3500 बरस, ताकत भी थी ज्यादा, लिखा है वो रहा दुनिया में मूसा के जमाने तक, के उसने कर दिए थे खर्च खाने में खजाने तक, थे जितने आदमी उस दौर में वो सबसे था ऊंचा, के पानी नूह के तूफान का उसकी कमर तक था, तकबुर था उसे बेहद फिरा करता था आवारा, जनाबे हजरते मूसा के हाथों वो गया मारा, शजर वो नील से लाया तो उसको नूह ने चीरा, निकाले 4 तख्ते नाम था 4 खलीफा का, मुकम्मल हो गई कश्ती तो फिर रूहुल अमी बोले, कहां से आएगा तूफान अब ये राज भी सुनिए, तुम्हारे घर में जो तंबूर है ऐ प्यारे पैगंबर, गरम पानी बड़ी तेजी से उससे आएगा बाहर, वो ऐसा तूफान बन जाएगा सबके होश खो देगा, जहां भर के दरख्तों और पहाड़ों को डुबो देगा, अलामत है यही तूफान की तुम होशियार हो जाना, जो है ईमान वाले उनको कश्ती में बिठा लेना,
यही कश्ती तुम्हारी खैरियत का आसरा होगी,
यही कश्ती तुम्हारी खैरियत का आसरा होगी,
यही कश्ती तुम्हारी खैरियत का आसरा होगी,
बचेंगे कश्ती वाले और सब दुनिया फना होगी,
बचेंगे कश्ती वाले और सब दुनिया फना होगी, बचेंगे कश्ती वाले और सब दुनिया फना होगी, बचेंगे कश्ती वाले और सब दुनिया फना
जब वो कश्ती तैयार हो गई तो हजरत नूह ने फिर अपनी कौम को समझाया कि देखो अभी राह रास्त पर आ जाओ, मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया है कि एक तूफान आएगा और जो लोग खुदा को मानने वाले नहीं हैं वो अपनी जान गंवा देंगे, मैं तुम्हारे भले की बात कहता हूँ, तुम इस कश्ती में सवार हो जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर उनकी कौम हंसने लगती है, कहती है कि ये तो दीवाना हो गया है नूह, और हमें झूठे अफसाने सुनाकर गुमराह करना चाहता है। कश्ती तो बना ली है लेकिन दरिया नहीं है, तो क्या रेत पर कश्ती चलाएगा? कहा है नूह, हम तेरे खुदा से डर नहीं सकते, तुझे हम पेशवा तस्लीम अपना कर नहीं सकते। और उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा।
जनाबे नूह ने उस कौम को हर चंद समझाया, मगर उनमें से इंसान एक भी ईमान नहीं लाया। जिमी पर आए फिर रूहुल अमी और नूह से बोले के जो है बैतुल मामूर आप उसकी सैर कर लीजिए। जिमी से आसमां पर अब खुदा उसको उठा लेगा। जनाबे नूह ने जब सैर कर ली तो यही पाया, फरिश्ते फिर चहारम आसमां पर ले गए उसको। हुआ फिर बाद उसके क्या अजीजो गौर से सुन लो, था घर में नूह के तंबूर एक रोटी पकाने का। पकाने रोटियां बैठी तो उनकी बीवी ने देखा, अचानक उसके अंदर से चला एक पानी का रेला। गरम पानी उबल कर तेज रफ्तारी से बह निकला, खबर दी नूह को तंबूर से पानी हुआ जारी। कहा जिब्रील ने आकर करो कश्ती की तैयारी, खुदा का हुक्म है हर चीज का जोड़ा रखो इसमें। जो है ईमान वाले बस सवार उनको करो इसमें, हर की जिंस का तुम बीज भी रख लो हिफाजत से। बिठाया नूह ने कश्ती में हर मोमिन को शफकत से, रखा कश्ती में जोड़ा आपने सब जानदारों का। तुखम हर एक अशिया का बहुक्मे किबरिया रखा।
सभी हंसते थे काफिर देख कर कश्ती का नजारा,
सभी हंसते थे काफिर देख कर कश्ती का नजारा,
सभी हंसते थे काफिर देख कर कश्ती का नजारा।
वो कहते थे करेगा क्या भला इस पानी का धारा,
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जब उस तंबूर में रोटी पका रही थी तो उन्होंने देखा कि अचानक अंदर से पानी का एक रेला चला, गर्म पानी उबलकर जब तेज रफ्तारी से बहने लगा तो उन्होंने आकर हजरत नूह को खबर दी। फौरन ही जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हैं कि अब आप कश्ती की तैयारी कर लीजिए और खुदा का ये हुक्म है कि हर चीज का जोड़ा इस कश्ती में रख लेना, और जो ईमान वाले हैं उनको इसमें सवार कर लो, हर एक जिंस का भी तुम बीज इसमें रख लो। हजरत नूह ने हर मोमिन को बड़े प्यार से बिठाया, सब जानदारों का जोड़ा आपने और हर एक का तुखम, हर अशिया का तुखम उसमें रखा। और उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा।
सभी दुनिया में मोटी धार से बरसात होती थी, जमीनों आसमां से तेज रो पानी हुआ जारी।
जमी पर जितने चश्मे थे बहाते थे सभी पानी, नजर आती थी चारों सिमत तुगियानी ही तुगियानी। जमी पर जब बड़ा पानी लगी वो तैरने कश्ती, था ऊपर साएबा जिसने के बारिश से हिफाजत की। हुई गरकाब बस्ती और जब पानी लगा बढ़ने, तो फिर तेजी से सब काफिर पहाड़ों पर लगे चढ़ने। थी लंबाई में 100 गज से ज्यादा नूह की कश्ती, लिखा है 400 गज से थी ज्यादा उसकी चौड़ाई। था चौथा एक बेटा नूह का पहुंचा पहाड़ों पर, वो कश्ती पर नहीं बैठा तकबर से हुआ खुद सर। पहाड़ों पर जो पहुंचा पानी तो फिर नूह घबराए, दुआ किया खुदा बेटा मेरा किनान बच जाए। हुआ फरमान हक गुमराह है वो डूब जाने दो, यकी तुम पर नहीं उसका सजा उसको भी पाने दो। पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया 40 गज पानी, बची कश्ती हुए गरकाब सारे जुल्म के बानी। बुतों का नाम ले लेकर सभी का फिर वो चिल्लाए, मगर झूठे खुदा उनके मदद कुछ भी न कर पाए। हुई 40 दिन पर साथ जमकर हुक्म से रब के, जमीने भी बहाए इतने दिन तक तेज तर चश्मे।
फना वो सब हुए तूफान में जिनके कल्ब काले थे,
फना वो सब हुए तूफान में जिनके कल्ब काले थे,
फना वो सब हुए तूफान में जिनके कल्ब काले थे।
सलामत थे वही कश्ती में जो अल्लाह वाले थे,
सलामत थे वही
से 40 दिन और 40 रात बराबर बारिश होती रही और पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ों की चोटियों तक जा पहुंचा। वो काफिर बचने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, लेकिन जब पहाड़ों से पानी उबूर करने लगा और ऊंचा होने लगा, तो हजरत नूह का एक बेटा जिसका नाम किनान था वो डूबने लगा। तो हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ की कि मेरा बेटा किनान बच जाए, लेकिन फरमाने हक हुआ कि वो गुमराह है उसको डूब जाने दो और उसका यकीन तुम पर नहीं है। हजरात, फना वो सब हुए तूफान में जिनके कल्ब काले थे, सलामत थे वही कश्ती में जो अल्लाह वाले थे। और आगे क्या हुआ सुनिएगा। रवा थी पानी पे जिस दम वो लोगों से भरी कश्ती, किया पेशाब पाखाना तो गंदी हो गई कश्ती। हुआ इल्हाम पेशानी पे फेरा हाथ हाथी के, तो उसकी नाक से खिंजीर दो एकदम निकल आए। वो दो खिंजीर कश्ती की गिलाजत खा गए सारी, ये देखा तो हुई शैतान को उस वक्त बेजारी। जो उसने हाथ एक खंजीर की पेशानी पे फेरा, तो उसकी नाक से दो चूहे फौरन हो गए पैदा। वो चूहे दोनों कश्ती में लगे सुराख जब करने, तो की फरियाद अल्लाह पाक से उस दम पैगंबर ने। कहा जिब्रील ने आकर जनाबे नूह से सुन लो, तुम अपने हाथ से पेशानी फौरन शेर की मल दो। मली जब शेर की पेशानी दो बिल्ली हुई पैदा, वो चूहे बिल्लियों ने खा लिए खटका गया सारा। उसी दिन से है बिल्ली चूहे की दुश्मन जहां भर में, के चूहे करते हैं नुकसान हर इंसान के घर में। रही तूफान में कश्ती दो रजब से दस मुहर्रम तक, इसी सूरत से गुजरे छह महीने आठ दिन बेशक। गई सुए हिजाज क्रोज कश्ती काबे तक पहुंची, किए सत्तर तवाफिक दम तो मुल्के शाम में पहुंची।
जरर पहुंचाना कश्ती को जरा तूफान के पानी से,
सलामत सब रहे कश्ती में रब की मेहरबानी से।
सलामत सब रहे कश्ती में रब की मेहरबानी से। सलामत सब रहे कश्ती में रब की मेहरबानी से। सलामत सब रहे कश्ती में रब की मेहरबानी से।
सामईन हजरात, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का ये वाक़या आप सुन रहे हैं। जिस वक्त ये कश्ती पानी पर रवा थी, तैर रही थी, तो उसमें लोगों ने पेशाब पाखाना वगैरह भी किया, जिससे वो गंदी हो गई। इल्हाम होता है हजरत नूह को कि हाथी की पेशानी पर हाथ फेरिएगा। हजरत नूह ने जैसे ही हाथी की पेशानी यानी माथे पर हाथ फेरा, तो उसकी नाक से दो खंजीर पैदा हो गए और वो खंजीर उस कश्ती की सारी गिलाजत यानी गंदगी को खा जाते हैं। शैतान ने जब ये देखा तो उसने खंजीर की पेशानी पर हाथ फेर दिया और उसकी नाक से दो चूहे पैदा हो गए जो कश्ती को कुतरने लगे, सुराख करने लगे। तो अल्लाह से फरियाद की पैगंबर ने, हजरत जिब्रील ने आकर हजरत नूह को बताया कि तुम अपने हाथ से शेर की पेशानी को मल दो। जब शेर की पेशानी को हजरत नूह ने मला, तो परवरदिगार ने दो बिल्लियां पैदा कर दी और वो बिल्लियां उन चूहों को खा गईं। उसी दिन से ये बिल्ली और चूहे की दुश्मनी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दो रजब से दस मुहर्रम तक उस पानी पर तैरती रही यानी छह महीने आठ दिन, और उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। खुदा के फजल से वो कश्ती कोहे जूदी पे ठहरी, हवा पश्चिम से आई तो फजा में आ गई खुशकी। हुआ फिर साफ मतला, धूप निकली और घटा पानी, यकायक फिर तो चोटी से पहाड़ों की हटा पानी। बना दी सात राहें पानी की जिब्रील ने आकर, जमी पर सात दरिया बन गए आए रवानी पर। गया पानी वो सब दरियाओं में चमकी जमी सारी, जमी पर अब कहीं पानी नहीं बाकी रहा कुछ भी। जनाबे नूह ने भेजा परिंदा कोहे जूदी से, जमी पर अब है पानी या नहीं जाकर खबर लाए। परिंदा मुर्ग चुगने में लगा वापस नहीं पहुंचा, जनाबे नूह ने ये दी दुआ वो उड़ न पाएगा। फिर उसके बाद भेजा एक कबूतर लौट कर आया, लगी थी खुश्क मिट्टी उसके पंजों में तो ये समझा, जमी पर अब नहीं पानी उतर कर नीचे अब जाए। कबूतर को दुआ दी प्यारा होगा सब परिंदों में, उतारा फिर जनाबे नूह ने कश्ती से लोगों को, जो कुछ सामान था लाए वो जमी पर देखो अब क्या हो। जड़ें और तुख्म जो भी थे जमी पर आपने बोए, नहीं जड़ मिल सकी अंगूर की बेहद परेशान थे।
किया फिर अर्ज खालिक से कहां अंगूर पहुंचा है,
किया फिर अर्ज खालिक से कहां अंगूर पहुंचा है,
किया फिर अर्ज खालिक से कहां अंगूर पहुंचा है।
निदा आई के वो शैतान जालिम ने चुराया है, के बाद जूदी पहाड़ पर हजरत नूह की कश्ती ठहरती है। उसके बाद आसमान साफ होता है, धूप निकलती है और पानी घटने लगता है। जिब्रील अमीन ने आकर सात राहें बना दी जो दरियाओं की शक्ल में थीं, और सारा पानी वो उन दरियाओं में चला गया। उसके बाद हजरत जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से लोगों को उतारा तो फिर अंगूर की जड़ नहीं मिल सकी। खालिद से अर्ज किया कि यार अब अंगूर कहाँ पहुंचा, निदा आई कि वो शैतान जालिम ने चुरा लिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि मेरे रब ने मुझको बताया है कि तूने अंगूर चुरा लिया है, अंगूर की जड़ जो थी वो तूने चुरा ली है। शैतान ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं अंगूर तो दे दूंगा, लेकिन क्या शर्त रखी समाप्त कीजिएगा। कहा ये नूह ने रब ने मेरे मुझको बताया है, अरे शैतान लई अंगूर तूने ही चुराया है। कहा शैतान ने एक शर्त पर अंगूर दे दूंगा, उसे तुम एक पानी दोगे मैं छह बार सींचूंगा। ये मानी शर्त हजरत ने तो फिर अंगूर वो पाया, उसे बोया तो पहली बार हजरत नूह ने सींचा। उसे शैतान ने एक लोमड़ी के खून से सींचा, दोबारा उसकी जड़ में शेर का फिर खून पहुंचाया। हलाक उसने किया खिंजीर उसका खून भी डाला, शराब अंगूर की जिस दम बनी तो ये असर आया। शराबी पहले मिसले लोमड़ी खामोश रहता है, फिर उसके बाद खसलत शेर की सबको दिखाता है। नशा जब और बढ़ता है तो वो खिंजीर बनता है, बुराई और भलाई क्या है सब कुछ भूल जाता है। हुआ शैतान खुश बोला बड़ा ऐसा किया मुझ पर, कहा ये नूह ने एहसान मेरा मुझ पे कर जाहिर। तो बोला बोलई तुमने जो सबको बद्दुआ दे दी, तो सारी नस्ल आदम मर गई दोज़ख में पहुंची है। न देते बद्दुआ तो वो कभी ईमान ले आते, उन्हें फिरदौस मिल जाती जहन्नम में नहीं जाते।
ये सुनकर नूह पैगंबर अलम से 100 बरस रोए,
कि अपनी बद्दुआ से हमने अपने ही बशर खोए,
अपनी बद्दुआ से हमने अपने ही बशर खोए।
हजरत, शैतान ने ये शर्त रखी कि अंगूर की जड़ तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आप उसको एक बार सींचेंगे तो मैं 6 बार सींचूंगा। सबसे पहले हजरत नूह ने उस अंगूर को सींचा, उसके बाद शैतान ने जब उसकी सिंचाई शुरू की तो पहली बार लोमड़ी का खून, दूसरी बार उस जड़ में शेर का खून और फिर खिंजीर का खून भी उसमें डाल दिया, और जब उस अंगूर की शराब बनी तो उसका ये असर हुआ कि शराबी पहले मिसले लोमड़ी खामोश रहता है, फिर उसके बाद खसरत शेर की सबको दिखाता है। नशा जब और बढ़ता है तो वो खिंजीर बनता है, बुराई और भलाई क्या है सब कुछ भूल जाता है। शैतान कहने लगा कि आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। नूह कहने लगे कि कैसे? कहा कि आपने बद्दुआ करके जो आदम की नस्ल को दोज़ख में पहुंचा दिया, अगर ये लोग जिंदा रहते तो कभी ना कभी ईमान ले आते और इनको जन्नत मिल जाती, आपने मेरा काम आसान कर दिया। ये सुनकर हजरत नूह 100 बरस तक रोए, और उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा।
कहा फिर नूह ने इबलीस से औलाद आदम की बनेगी किस गुनाह के बदले में ईंधन जहन्नुम की। बताया नूह को इबलीस ने बस 4 चीजों से, हसद हिरसो तकब्बुर और बुखल सब काम है गंदे। किया सजदा न आदम को मेरे दिल में हसद आया, इसी बायस इबादत हो गई शैतान कहलाया। तकब्बुर से जनाब आदम को जो अपने से कम जाना, मिला इस बात पर मेरे लिए दोज़ख का परवाना। जो दाना गेहूं का एक हिर्स से आदम ने था खाया, उसी ने आदम हव्वा को जन्नत से निकलवाया। बखीलों को कहा रब ने के वो बख्शे न जाएंगे, बुराई जिन में चारों होंगी वो दोज़ख में जाएंगे। हुआ फिर हुक्म खालिक नूह की कश्ती की लकड़ी से, इबादत के लिए जूदी पे एक मस्जिद बना लीजिए। बनाई नूह ने मस्जिद वहीं बस्ती में वो ठहरे, उन्हीं में साम याफस हम तीनों थे पिसर उनके।
वहाँ कुछ रोज रहकर नूह ने रब की इबादत की, जो उनके साथ में मोमिन थे उन सबको हिदायत की। कहा शैतान खुला दुश्मन है, उससे हर घड़ी बचना, पनाह लेना खुदा की और उसके कहर से डरना। खुदा को राजी रखने ही में बस अपनी भलाई है, खुदा के कहर ने देखो तबाही क्या मचाई है।
खुदाए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है,
खुदाए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है,
खुदाए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है,
उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है,
उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है।
सामईन हजरात, परवरदिगार आलम का हुक्म होता है हजरत नूह को कि इस कश्ती की लकड़ी से इबादत के लिए जूदी पहाड़ पर एक मस्जिद बना लीजिए। हजरत नूह ने वहां एक मस्जिद बनाई, उसमें उनके तीन बेटे साम, याफस और हाम ये भी शामिल थे। वहां कुछ रोज रहकर आपने रब की इबादत की। उसके बाद जब हजरत नूह की उम्र 950 साल की हुई तो आप इस दुनिया से रहलत फरमा गए, और फिर जो उनके तीनों बेटे रह गए उनमें साम ने मुल्क अरब में अपना घर जाके बसाया, याफस ने तुर्किस्तान को आबाद किया, और हाम ने आकर हिंदुस्तान में, हिंद में अपना ठिकाना बनाया। उन्हीं तीनों की आल औलाद से आबाद है ये दुनिया। ये अपने अपने नसीब की बात है कि किसी को आबिद हो गया कोई और कोई गैर को पूछने लगा। हमेशा से है शैतान दुश्मने नस्ले आदम का, वही बचता है जो बंदा है मोमिन रब्बे आलम का। सामीन हजरात, हजरत शौक वजीर गंजवी साहब आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट सुनिए। इस कैसेट के बाद हम हजरत पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुनाएंगे जो कुछ दिन के बाद आएगा। उसमें आप हजरत यूनुस पैगंबर का वो वाकया जो मछली का है बड़ी ही खूबसूरत अल्फाज में सुनेंगे, जिसको हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने ही लिखा है। लेकिन इंतज़ार कीजिए उस कैसेट का, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का ये आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ये सुनकर वाकया ऐ दोस्तो इतना समझ जाना, ये दुनिया ख्वाब है शैतान के कहने में मत आना। करो उसकी इबादत जो खुदा माबूद है सबका, वही हाजत रवा है और वही माबूद है सबका, वही खालिक वही राजिक वही मुश्किल कुशा सबका, के तूफाने हवादिस में वही है ना खुदा सबका, उसी के हाथ में है जिंदगी और मौत बंदों की, वही देता है इज्जत और वही देता है जिल्लत भी, हसद हिरसो तकब्बुर से बुखल से दूर ही रहना, खुदा को जो बुरी मालूम हो वो बात मत कहना, तासुब बुग्ज़ो कीना और अदावत मत रखो दिल में, मोहब्बत और खुलूस अखलाक का जज्बा भरो दिल में, किसी पर बेखता जुल्म सितम हरगिज नहीं करना। कयामत आने वाली है खुदा के खौफ से डरना। यकीन जानो के जिस दिन मौत का तूफान आएगा किसी का भी सफीना हो भंवर में डूब जाएगा।
दुआए शौक है अल्लाह हम सबको हिदायत दे।
दुआए शौक है अल्लाह हम सबको हिदायत दे।
दुआए शौक है अल्लाह हम सबको हिदायत दे।
गम को दूर कर दे तीनों दुनिया की मसरत दे।
मसरत दे।